میرے بھائیوں، دو ایک باتیں خالی عرض کرنی ہیں۔ ہم جو مضمون رمضان سے پہلے چلاتے تھے وہ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان میں ایک بہترین زندگی بطور تحفہ دی تھی، اس کے مطابق ہم اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مسجد کو ویران نہیں کریں گے۔ یہ ہم عزم کریں کہ فجر میں جیسا ماحول عام مہینوں کے اندر ہوتا ہے، ہم ایسا ماحول اپنی مسجد کا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، جو مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد میں لانے کی فکر کریں۔ جب امت کے اندر سے یہ کمزوری آتی ہے امت میں کہ مسجد والے جو مسجد سے باہر ہیں ان کو مسجد تک نہیں لاتے اور مسجد پھر ویران ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور قہر ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر جب تک ایمان والوں کی آبادی رہے گی اور مسجد میں تلاوت کے حلقے رہیں گے، ذکر و اذکار کے حلقے رہیں گے، اسی طریقے سے تعلیم اور تعلم کے حلقے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر اپنی خصوصی عنایتیں نازل فرمائے گا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں نیک لوگ ہوں، اس امت کے اندر نیک لوگ موجود ہوں، پھر بھی یہ امت ہلاک ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگی۔ حضرت زینب بنت جہش نے پوچھا کہ کب ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا کثر الخبث، یہ امت جب باغی بنے گی، بغاوت عام ہو جائے گی، جب بغاوت کی طرف دوڑے گی تو اللہ کے قہر اور عذاب سے اس امت کے نیک لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے، اللہ کا عذاب انہیں گھیرے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ کے غضب کی طرف جا رہے ہیں ان کو موڑ کر کے وہ اللہ کی رحمت کی طرف نہیں لائے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس امت کے دو بڑے وصف ہیں جو بنی اسرائیل میں نہیں تھے۔ سب سے پہلا وصف امر بالمعروف، یعنی یہ امت برے لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتی ہیں، تو یہ دو وصف اس امت سے نکل سکتے ہیں کبھی؟ آپ نے فرمایا ہاں نکلیں گے۔ بولو، تعجب کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ امت دونوں وصف کو ضائع کرے گی۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے دور میں یہ سب ناممکن تھا، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آنا آسان نہیں تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جبکہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ کہا یا رسول اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی کیا مطلب، کیا کرے گی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو میری امت کے اندر کہ لوگ دین کے معاملے میں درگزر کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں درگزر کر رہے ہیں، دنیا کے معاملے میں پکڑ کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں چلتا ہے، ہوتا ہے، سب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا، درگزر کرنا، سب کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، لوگوں میں غفلت ہے، آ گئی ہے لوگ، ویسے بھی قیامت آنے والی ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جو درگزر کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ امت دین کے معاملے میں درگزر کرے، دنیا کے معاملے میں سختی کرے، پکڑ کرے، دنیا وصول کرے، اپنا حق لے، تو دنیا میں سختی، دین میں حقارت اور دین میں سہولت، اگر یہ بات آ جائے، دوسرے نمبر پر علم، علم دین نا اہلوں کے پاس چلا جائے کہ جس میں وہ لیاقت اور صلاحیت نہیں ان کے پاس علم دین چلا جائے، اور حکومت چوروں کے پاس چلی جائے۔ تین خوبیاں آپ نے، تین کمزوریاں بتلائی اس امت کی، تو یاد رکھو کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ دے گی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا جو ماحول تھا اس کو برقرار رکھیں۔ کاروبار میں پھنس کر کے، اپنے دھندوں میں پھنس کر کے نمازوں کے جنازے نکال دینا اور مسجدوں کو ویران کر دینا، یہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، ایک ذمہ داری لے کر آیا اور ہم نے ذمہ داری ادا کر دی، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ इसलिए जिस तरह रमजान के अंदर मस्जिद का जो माहौल होता है, हर मस्जिद के अंदर यही बात होती है, हर मस्जिद में हम जहां कहीं पर भी हों, हम अपने कारोबार कामकाज के लिए जहां पर भी गए हुए हों, हम अपनी नमाज को जाई न करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के जरिए ही बातिल के ऊपर अपना झाड़ू लगा देता है। जब कभी भी बातिल ने इस उम्मत को परेशान किया है, चंगेज खान ने परेशान किया, 22 लाख मुसलमानों में से 17 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया, अरब मुल्कों के अंदर 22 लाख में से 17 लाख को। लेकिन शेख शहाबुद्दीन सहरोर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इस उम्मत को आगाह किया कि तुम कहां जा रहे हो, तुम अपने नबी के नक्शे कदम से हटकर कहां फिर रहे हो, ये बाकी 5 रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आपने फिक्र की, आपने मस्जिदों को आबाद करवाया, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं तातारियों के अंदर उम्मत के मसीहा पैदा कर दिए और तातारियों पर ऐसा झाड़ू लगा दिया अल्लाह ताला ने, आज तक तातारिस्तान भी अगर रुए जमीन पर मौजूद है तो पक्के मुसलमान बनकर रह रहे हैं। जब भी बातिल इस उम्मत को परेशान करेगा, अल्लाह अपने गजब और अजाब का झाड़ू फेरेगा, लेकिन शर्त है कि ये उम्मत अल्लाह के दर पर भी आनी चाहिए। अगर ये दर पर नहीं आई तो अल्लाह ताला फिर उनको और उनकी सोच और समझ के हवाले कर देता है कि तुम अब अपने बचने का रास्ता तुम खुद तलाश कर लो, तुम अपनी तदबीर खुद कर लो, अब तुम जानो और तुम्हारी तदबीर जाने। तो मेरे भाइयों, ये उम्मत कभी भी कामयाब नहीं होगी जब अल्लाह ताला उनको उनके काम के हवाले कर दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमेर इब्ने साद को मकाम हिम्स का गवर्नर बनाया। हिम्स मुल्क शाम, जो उस जमाने का सबसे मजबूत, माल के एतबार से भी, कल्चर के एतबार से भी, तालीम के एतबार से भी बड़ा मजबूत इलाका था मुल्क शाम, और हिम्स बहुत खूबसूरत कैपिटल था उस जमाने के अंदर। तो आपने हजरत उमेर बिन साद को गवर्नर बनाया। जब गवर्नर बनाया, इनको रवाना कर दिया, ये अपने मकाम हिम्स पहुंच गए। 1 साल तक कोई खबर नहीं कि उमेर क्या कर रहे हैं, उमेर की क्या हालत है, उमेर ने लोगों पर मेहनत की है कि नहीं की, उम्मत को उम्मत बनाने की फिक्र की कि नहीं की, कोई खबर नहीं। हजरत उमर ने अपने कातिब को बुलाया, बुला करके कहा कि खत लिखना है हिम्स के गवर्नर को, और वो है उमेर इब्ने साद, उस पर एक खत लिखो। खत के अंदर ये लिखो कि 1 साल से तुम हमको छोड़कर चले गए हो, हमको लगता है कि तुमने खयानत की है, तुमने इस उम्मत को धोखा दिया है, तुमने आज तक कोई खबर नहीं पहुंचाई, कोई खत नहीं लिखा, आपकी तरफ से कोई हमारी तरफ सफीर नहीं आया, और खत में ऐसा लिखो कि आज तक पूरे साल में तुमने माले गनीमत में से या बैतुल माल में से या जो भी आपके पास हदिया और तहाई पहुंचे हो, वो जितना भी माल अपने लिए जमा किया हो, अमीरुल मोमिनीन उमर का फैसला है कि ये सब कुछ लेकर के मदीना आ जाओ। और ये खत मिलते ही 1 दिन भी गुजरना नहीं चाहिए, उसी वक्त निकल जाओ हिम्स से। ये खत लिखा और ये खत एक सफीर लेकर पहुंचा। तो उमेर उस वक्त मस्जिद में झाड़ू लगा रहे थे, ये खत जिस वक्त पहुंच रहा है तो उमेर गवर्नर, हिम्स शाम का गवर्नर, वो झाड़ू लगा रहे हैं मस्जिद के अंदर, और गर्द उनके पीठ के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है और उनके बाल परागंदा हैं और आंखें मोटी मोटी हो चुकी हैं और उनके चेहरे का रंग जो लाल था जब मदीने में थे, उस जमाने में पीला पड़ गया है, जो लहू और खून की कमी की वजह से होता है, एकदम कमजोर उनका ये पेट कमर से लग रहा है और उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं। तो वो खत में देखता रहा जो सफीर था और उमेर को देखता रहा कि यार ये उमेर ही है कि कोई दूसरा है, क्या ये मस्जिद की सफाई करने वाला तो कोई नहीं, खादिम तो नहीं है मस्जिद का, कि ये हिम्स का गवर्नर ही है। वो एकदम सोच में पड़ गया। उसने बाहर लोगों को पूछा कि कौन है, कहा ये हमारा गवर्नर है। तो वो खत वाला कहने लगा कि क्या तुम लोग अपनी मस्जिद की हिफाजत नहीं करते हो, क्या तुम लोग अपने मस्जिद की सफाई नहीं करते हो? तुम्हारा गवर्नर ही सब कुछ करता है। कहा हाँ, हमारे गवर्नर ने हमको इससे मना किया है कि इस मस्जिद की रखवाली तुम्हारा गवर्नर करेगा। तो डरते डरते गया और कहा कि हुजूर, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन ने आपको यह खत दिया है। तो झाड़ू एक तरफ रख दिया और खत लेकर के उसको सर आंखों पर चढ़ा लिया, खत की इज्जत की, खत का एहतराम किया कि मेरे अमीरुल मोमिनीन ने, उम्मत के अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा और वो भी मुझ ना अहल की तरफ, मेरे अंदर इतनी अहलियत नहीं है और मेरी तरफ, लेकिन फिर भी उमर की जिम्मेदारी है कि अपने गवर्नरों की तरफ खतूत रवाना करते हैं, तो मेरी तरफ भी खत आया है। बड़े एहतराम और इज्जत से मस्जिद के अंदर बैठे और गवर्नर ने खत खोला, खत पढ़ने लगे। उसमें शुरू ही से हजरत उमर, आपने भी खुतबे के अंदर सुना, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, दीन के मामले में सबसे ज्यादा सख्त उमर हैं। हर खतीब अपने खुतबे के अंदर हजरत उमर का ये फरमान पढ़ता है कि सबसे ज्यादा सख्त। तो सख्त लहजा था, लहजे में ये था कि आप एक साल से गए हो, आपने कोई खबर नहीं पहुंचाई, कोई खत नहीं दिया, आपने वहां के अहवाल लिखकर नहीं भेजे, आप क्या काम करते हो, आपके काम की कोई हमारे पास माहिती नहीं है, आपकी क्या कारदगी है वहां पर वो भी हमको मालूम नहीं, तो लगता है तुमने इस उम्मत से खयानत की है। तो कांपते 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 खत गिर गया कि उमेर को ये कहा जा रहा है कि उम्मत से खयानत की है। अरे उमेर ने तो आज मस्जिद के अंदर आकर के झाड़ू लगाया, झाड़ू ने कभी खयानत नहीं की, ये तो उम्मत का मसला है। फिर इन्होंने खत थामा और पढ़ा तो अंदर लिखा था कि उमेर, तुम्हारे पास जो भी जायदाद हो, चाहे माले गनीमत से लिया हो, बैतुल माल से लिया हो, आपके पास लोगों ने बड़े बड़े हदीये भेजे होंगे, हिम्स के गवर्नर हो, आपको दिरहम दीनार की खनक होगी तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के अंदर हीरो जवाहरात के अंबार होंगे, ये सब लेकर के मदीना आओ। तो उमेर सोचने लगे, यहां कभी दिरहम नहीं देखा, यहां जव की रूखी सूखी रोटी खा करके दिन गुजारा करने वाला आदमी, और यहां हदिया का तो कभी हार सुना नहीं है, और ये कैसी बात हो रही है मेरे हक में। उमेर ने सोचा कि आज ही जोहर की नमाज पढ़ के मदीने की तरफ रवानगी होगी, आज ही। इन्होंने अपनी एक लकड़ी ली, जो अक्सर देहाती और चरवाहे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि चरवाहे इस तरह यहां यूं डालते हैं, दो किनारे निकलते, एक किनारा यहां एक किनारा यहां, कभी बाज देहाती थैली लटका देते हैं, इस किनारे पर थैली लटकाते हैं और यहां अपना साजो सामान लटकाते हैं। ये अरब की आदत है, अरब ऐसा करते थे, वही फिर कल्चर और तहजीब मुंतकिल होकर हमारे हिंद के अंदर भी आई। आज भी हमारे जंगलों के अंदर और मवेशी के चरवाहे इस तरीके से लकड़ी लगाते हैं अपने पीठ के ऊपर और कंधे के ऊपर। इन्होंने एक थैली ली, चमड़े की थैली, उसमें एक मिट्टी का प्याला डाल दिया और इनको एक आदमी ने झाड़ू दी थी, झाड़ू, वो झाड़ू भी अंदर रख दी, वो हदिया में वो झाड़ू आई थी, गवर्नर को झाड़ू हदिये में दी थी, वो भी रख दी, और एक तरफ अपना तोशा रखा, तोशे के अंदर थोड़े जव थे, नहीं वो हमारे कदीम जमाने में हमारे बाप दादे, चूंकि बर्तन नहीं हुआ करते थे तो पुल्ली के अंदर पुल्ली बना देते थे गल्ले की, और इसको टांग दिया करते थे, झोंपड़ों के अंदर लटका दिया करते थे। तो एक थोड़े से जव पड़े हुए थे, वो जव इन्होंने लिए और एक रोटी जव की खुद उन्होंने बनाई थी वो भी अंदर डाल दी, और ये हिम्स का गवर्नर पैदल चल करके एक महीने की मसाफत तय करके मदीना जा रहा है, और मैं जून की गर्मियों के अंदर जा रहा है, साथ में कोई खादिम भी नहीं, साथ में कोई ऊंट नहीं है, कोई सवारी नहीं है, दिरहम दीनार नहीं और पैर के अंदर जूते नहीं। ऐसी हालत के अंदर हिम्स का गवर्नर अपने अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में जा रहा है। एक महीना गर्म लू की थपेड़े खाता हुआ, बाल बढ़ चुके हैं, नाखून बढ़ चुके हैं, चेहरा सियाह पड़ चुका है और चमड़ी लटक चुकी है, ऐसे हाल के अंदर मदीने में किसी से कोई बात नहीं, सबसे पहली बात होगी तो मेरे अमीरुल मोमिनीन से होगी, सबसे पहला मुसाफा होगा तो मुसलमानों और उम्मत के अमीर से होगा, और सबसे पहला दीदार होगा तो उम्मत के अमीर से होगा। आप जा रहे हैं मस्जिद नबी, पूछा भाई तुम्हारा अमीर कहां है, कहा मस्जिद के अंदर है। तो मस्जिद के अंदर हजरत उमर भी झाड़ू लगा रहे थे जिस वक्त आ रहे थे, गवर्नर हिम्स का भी लगा रहा है, एक उम्मत का अमीरुल मोमिनीन भी झाड़ू लगा रहा है। तो जब पहुंचे तो हजरत उमर समझे कि लगता है कि कोई मुसाफिर है, क्योंकि जिस वक्त उमेर को भेजा था, ये उमर है और ये उमेर है, तस्गीर है, खाली इतना फर्क है कि उमर और उमेर। तो इन्होंने हजरत उमेर को अलग चेहरे में देखा था, जब इन्होंने हाजिरी दी तो अलग चेहरे में है। तो हजरत उमर समझे कि लगता है कोई मुसाफिर होगा, बेचारा दूर दराज से सफर तय करके आया होगा। उन्होंने वहीं पर अपना सामान रख दिया, मस्जिद नबी के बाहर ही रख दिया, और वो सीधे हजरत उमर की तरफ आए और आकर के कहने लगे कि उमेर उम्मत का बागी, उम्मत का बागी, उम्मत के शेर से मुलाकात के लिए आया है, और इस उम्मत के सबसे बड़े मुत्तकियों के इमाम से मुसाफा करने आया है, और मैं खाइन हूं, खयानत करने वाला हूं। हजरत उमर ने जो लिखा था वो सब बोल रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर सबसे बड़ा खाइन तुम्हारे दरबार में आया है, सबसे बड़ा धोखेबाज तुम्हारे पास आया है, जिसने इस उम्मत से धोखा किया है। आकर के हजरत अमीरुल मोमिनीन को ऐसे लग गए, वो गला ही नहीं छोड़ रहे थे। हजरत उमर कहने लगे कि उमेर ये तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी हालत कैसे हो गई, जारो कतार रोने लगे। कहा कि ये बकोरा गुलाम है कि जिस गुलाम को तुमने हिम्स का गवर्नर बनाया था, आज तुम्हारे दर पर है तुम्हारे एक फरमान पर। ये ऐसा बकोरा गुलाम है कि जिसके पास न कोई सवारी है न कोई नौकर चाकर है, एक महीने की मसाफत तय करके आपके दर पर आया है। आपने जैसे खत भेजा था उस खत के एहतराम में तुम्हारी मुलाकात के लिए आया है। तो हजरत उमर जारो कतार रो रहे कि ये गवर्नर, हिंस का गवर्नर, उसकी ये हालत है। तो फिर बातचीत हुई थी, उमर कहने लगे कि उमर मैं पूरी दुनिया लेकर आया हूं, चूंकि आपने खत के अंदर लिखा था कि आपके पास जितने भी हदिया तोहफा जो हो सब कुछ मैं लेकर आया हूं, मस्जिद नबी के बाहर माल और दौलत का अंबार लगा हुआ है। हजरत उमर दंग रह गए कि हो सकता है कि क्या बोल रहा है, दिरहम दीनार के बाहर बड़े बड़े पैकेट पड़े हुए हैं, तो मैंने अपनी दुनिया को बाहर रखा है जो आपने हुक्म दिया था, जरा मेरी दुनिया को आप ले लो, चूंकि आपने हुक्म दिया था तो मैं सब कुछ लेकर आया। हजरत उमर वैसे ही उनके चेहरे को देख करके कांप रहे थे कि जिस आदमी का जाहिरी हुलिया ये बन गया हो और उम्मत के हालात ने जिसको ऐसी हालत करने पर मजबूर कर दिया हो, इसकी क्या दुनिया हो सकती है। तो हजरत उमर को कहने लगे आप बैठो, मैं मेरा सारा मता यहां लेकर आता हूं। बाहर गए, जिस अंदाज से हिम्स से निकले थे और जहां लकड़ी इन्होंने लगाई थी वैसे ही लकड़ी वहां पर रखी, और दोनों तरफ, एक तरफ तो कुछ जव लटक रहे थे, एक तरफ पानी का मशकीजा लटक रहा था, ऐसे हाल के अंदर हजरत उमर के सामने आ रहे हैं। हजरत उमर ने जब उनकी हालत पर आने का अंदाज देखा, बेहोश होकर गिर गए, कहने लगे कि रब्बा ए मेरे रब, जब तक उम्मत के पास उमेर जैसी दौलत है, इस उम्मत को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, और इस उम्मत के ऊपर तेरा गजब और गुस्सा कभी भी नाजिल नहीं हो सकता जब तक कि इस उम्मत के पास उमेर इब्ने साद जैसे लोग मौजूद हैं। जब आए कहने लगे उमर ये हमारी दुनिया है, आपने जो कहा था कि जो भी हदिया तो हदिये में एक झाड़ू मिला है वो आपको मैं दे देता हूं, वो झाड़ू मैंने मस्जिद में दे दिया था, मुझे एक आदमी ने दिया था, वो मैं मस्जिद के अंदर उससे मैं सफाई करता था, लेकिन आपने कहा कि जो भी हदिया हो तो वो लेकर आया हूं, आपको दे देता हूं मैं, और ये तो बाकी लकड़ी है कि मैं अपने गुजरान के लिए बकरियों को चराता हूं। इतना बड़ा हिम्स का गवर्नर बकरियों को शाम के वक्त सुबह के वक्त चराता है अपने गुजरान के लिए,
और कहा कि हमारे घर का सामान तो ये मिट्टी का प्याला है, ये बर्तन है, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप हिम्स में तहकीक कर सकते हो कि इसके पास इन चीजों के अलावा कोई चीज है, तो आप अपने रहबरों को वहां भेज सकते हो और तहकीक करा सकते हो। तो हजरत उमर ने माफी मांगी, कहा कि भाई आपकी कोई खबर नहीं थी, तो आपको ऐसा लगा कि कहीं आप बगावत की राह पर तो नहीं चले गए। कहा उमर, जिस उम्मत के उमर ने उमेर के ऊपर भरोसा कर दिया हो, ये उमेर औरों के नक्शे कदम पर चल सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। आपकी ये गलतफहमी हो गई, ये कभी नहीं हो सकता। हजरत उमर ने कहा कि इनको आइंदा मौत तक के लिए वहां के गवर्नर बनाकर मैं भेजता हूं, ये लिख दो। अपने कातिब को कहा, मौत तक। कहा कि उमर, न मैं आपकी तरफ से गवर्नर बनूंगा, ना आपके बाद किसी और अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कभी गवर्नर बनूंगा। इसलिए मैंने देख लिया कि दुनिया क्या चीज है और बचना कितना मुश्किल है, मैंने देख लिया है। और अपने आप को उस समंदर से बचाकर चलाना कितना मुश्किल काम है, वो उमेर ने देख लिया है। इसलिए मुझे आप अभी से ही बर्खास्त कर दो, बरतरफ कर दो, और आइंदा के लिए भी मैं आपके सामने ये अहद देता हूं कि आइंदा कभी भी मैं हिम्स तो क्या, मुझे अगर छोटे देहात पर भी अगर गवर्नर बनाया गया तो मैं नहीं बनूंगा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को इस अहदे पर लाकर कितना आजमाता है। तो सब कुछ दे दिया, उमर रोने लगे। आपने 500 दीनार उनके घर पर भेजे, हारिस बिन मालिक जो उनका गुलाम था उनके पास भेजे। तो उमर कहने लगे कि उमर, अगर यही करना था तो फिर जो तुमने मेरे हक में सोचा मैंने कब का कर लिया होता। अगर यही खनक देखनी होती दिरहम दीनार की, तो जो तुमने लिखा कि तुमने खयानत की है, तो मैं हिम्स में ही कर लेता। मुझे एक दीनार आपका नहीं चाहिए बैतुल माल का, इसलिए कि मैंने वहां नहीं लिया तो मैं यहां कैसे ले सकता हूं। ये हजरत उमर, जब इनका इंतकाल हुआ तो हजरत उमर कब्र पर भी जारो कतार रोते थे। आपने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई, आप जारो कतार रोते थे और इतना रोए कि कब्र की मिट्टी हाथ में ली और आप इस तरह मिट्टी को डालते थे, इस तरह इतना रोए और कहने लगे कि उमर, अगर तू कुछ और साल हमको ये खिदमत दे देता तो फिर रोए जमीन का मंजर ही कुछ और होता, लेकिन तूने दुनिया से एराज कर ली, तू कामयाब हो गया कब्र के अंदर भी और हशर के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। तो मेरे भाइयों, अपने आप को इतने न फांस दे कारोबार में कि फिर हमारी हालत गाफिलीन जैसे हो जाए और अल्लाह हमको गाफिलीन में लिख दे और कयामत के दिन अल्लाह हमें जलील करे। तो मेरे भाइयों, कुछ रहम करना अपने आप पर। रमजान में जैसे फिक्र के साथ इबादतें की, इस तरीके से हम अपनी मस्जिद को भी आबाद करें। और बाकी जो अहवाल आप सुनते थे, इंशाल्लाह वो अगली जुमा से हम शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे मजलूमीन जो कैदी हैं, इनका ये पहला जुमा है, तो जितनी भी हो सके मदद भी करें, उनके हक में दुआ भी करें। يا رب لك الحمد حمدا دائما ما دوامك ويا رب لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك اللهم اهدنا الصراط ربنا هب لنا برحمتك يا ارحم الراحمين बढ़ गए डबल आए।